الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة آل عمران کی آیت 185 سے ہم شروع کریں گے 185 سے یہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ احد کے واقعے کے حوالے سے کچھ باتیں چلی تھیں اس میں منافقین مومنین اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر لگنے والی تہمتیں ان ساری باتوں کو سمیٹا گیا تھا وہ سلسلہ تقریباً ختم ہو گیا ہے لیکن ابھی بھی وہ دوسرے زاویے سے اب بات چل رہی ہے تو پیچھے جو چلی تھی بات کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جو یہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے کہ وہ قربانی کریں اور آسمان سے آگ آ کر اس کو کھا جائے یہ ہوگا معاملہ تو تب ہم مانیں گے ورنہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے یعنی قرآن کی ساری تفصیل کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے کی احد کے واقعے کے پس منظر بتایا حکمتیں بتائیں سارا کچھ بتانے کے بعد نتیجہ یہ نکلا تھا کہ انہوں نے تب بھی ایمان لانے کو انکار کیا تھا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ کوئی بات نہیں آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا ہے حالانکہ وہ بھی آپ ہی کی طرح بینات لے کر آئے تھے کتاب بھی اور ہدایت بھی لے کر آئے تھے آگے فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت ہر جان نے موت کو چکھنا ہے یعنی موت کا شکار ہوگی تو اس کا مطلب ہوا کہ جتنے بھی لوگ دنیا میں ہیں وہ خدا کی گرفت سے بچ کر نہیں جا سکتے یہ دنیا کی حقیقت ہے ہر ایک نے مرنا ہے اور کل قیامت والے دن اس کا جواب دینا ہے تو یہ جو لوگ اس وقت باتیں بنا رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ مذاق اڑا رہے ہیں یا آپ کا انکار کر رہے ہیں تو یہ بھی کل قیامت والے دن پکڑے جائیں گے تو یہ بات تمہید کے طور پر باندھ کے آگے فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ پورا پورا بدلہ تو صرف قیامت کے دن ہی ملنا ہے بہت اہم جملہ ہے پورا پورا بدلہ تو قیامت کے دن ہی ملنا ہے یعنی اگر تم لوگ یہ خیال کرو کہ اچھا اگر اللہ کے رسول کا انکار کرنے کے بعد بھی لوگ جیتے ہیں تو پھر اللہ تو نہ ہوا اللہ کے رسول سچے تو نہ ہوئے تو اگر اچھے لوگ بھی جی رہے ہیں کافر بھی جی رہے ہیں مومن بھی جی رہے ہیں تو پھر یہ اس بات کے خلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے آج کل بھی یہ بڑا سوال اٹھتا ہے تو اس زمانے میں بھی یہ سوال تھا جس کا جواب دیا گیا کہ دیکھو پورا پورا بدلہ دینے کے لیے یہ دنیا نہیں بنائی گئی پورا پورا بدلہ دینے کے لیے صرف قیامت کا دن مقرر کیا گیا ہے اس دن ہر کافر کو اپنے کفر کی ہر مجرم کو اپنے جرم کی اور ہر مومن کو اپنی نیکی کی جزا سزا مل جائے گی دنیا اس کے لیے بنی نہیں ہوئی ہے تو یہاں پر جو لفظ انما ہے اس کو عام طور سے مترجمین اگنور کر جاتے ہیں کہ صرف پورا پورا بدلہ تم کو دیا جائے گا یوم القیامہ قیامت کے دن تو یہ قرآن کے اہم مضامین میں سے ایک ہے جس کو اگر آپ میں نہیں سمجھیں گے تو بہت ساری اللہ تعالیٰ کی اس کائنات کی حکمتوں کو پا نہیں سکیں گے تو یہ سمجھنا کہ ہر چیز کا یہیں پہ اجر مل جائے گا دنیا میں جس نے جو جرم کیا اس کو فوراً اور مکمل سزا مل جائے اور جس نے نیکی کیا اس کا رزق کھل جائے اس کے وافر نعمتیں مل جائیں اور وہ ہر طرح سے خوشی میں نحال ہو جائے یہ دنیا اس طرح اس کے لیے نہیں بنی ہے اس کے لیے صرف آخرت کا دن بنا ہے یہ جملہ ہے جو اس غوغا کو یا اس اعتراض کو ختم کرنے کے لیے تھا کہ یہ لوگ رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں رسول پر اعتراضات کر رہے ہیں رسول کے اوپر طرح طرح کی تہمتیں لگا رہے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ ہو نہیں رہا ایک اور مضمون ہے جو اپنے موقع پر آئے گا تو میں انشاءاللہ واضح کروں گا کہ اگرچہ پہلے نہ لکھ دیا گیا ہوتا تو میں ان کو ابھی سزا دے دیتا یہ ایک دوسری بات ہے جو قرآن مجید میں حکمت اللہ تعالیٰ کی بتائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پلان طے کر رکھا ہے مثال کے طور پر कि काफिर को सज़ा दुनिया में नहीं मिलनी, मुजरम को दुनिया में पूरी सज़ा नहीं मिलनी। अगर ये ना लिखा गया होता तो मैं काफिरों को पूरी पूरी सज़ा देता ये। और इसी तरह अगर एक रसूल की कौम पर अज़ाब नहीं आना तो वो नहीं आएगा। अगर पहले से ना लिखा गया होता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम पर आसमान से अज़ाब आना है या नहीं आना है तो उसके ख़िलाफ़ नहीं होगा, क्योंकि पहले से तयशुदा कवानीन के मुताबिक कोई तकदीर कोई असूल तय कर दिया गया है, अब उसकी ख़िलाफ़ वर्जी नहीं होगी। तो क्योंकि वो अल्लाह ने लिखा है, अल्लाह को या तो अंदाज़े लगा के लिखा था तो अब अंदाज़े गलत निकल आए, ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए ये दो असूल जो हैं ये याद रखने चाहिए कि दुनिया में होने वाले काम लिखी हुई जो अज़ल में लिखी गई थी हज़रत आदम के ज़माने में, वो लिखी हुई तकदीर के मुताबिक होना है। ऐसा नहीं कि आज अल्लाह ताला ने पहले लिख रखा था कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे लेकिन फिर ख्याल हुआ कि ना भेजा जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं होगा। जो लिखा है सो लिखा है, उसने आना है, और जो वाक़यात होने हैं जो मेरे साथ हादसा पेश आने हैं वो ख्वाह मेरी गलती की वजह से हो, अल्लाह ने लिख रखा होगा ये गलती करेगी तो ये करेगा तो ये सज़ा मिल जाएगी, ये गलती नहीं करेगा तो बच जाएगा, इस तरह से लिखा, वो लिखा हुआ हो के रहना है। तो चीज़ों का पूरा पूरा बदला सिर्फ क़यामत में मिलेगा। तो गोया इंसाफ का मकाम क़यामत है, दुनिया नहीं है, दुनिया दारुल इंसाफ नहीं है, इंसाफ का मकाम आखरत है, क़यामत। तो क़यामत वाले दिन पूरे पूरे चीज़ों का अजर मिलेगा, सज़ा मिलेगी, जज़ा मिलेगी, लेकिन दुनिया इस तरह इस काम के लिए बनी नहीं है। तो ये बहुत अहम जुमला है जिसको तमाम ज़िंदगी में पेश नज़र रखना चाहिए कि इन्नमा तुवफ़ौना अजूरकुम यौमल क़ियामा, कि तुम्हारे पूरे पूरे बदले जो हैं वो सिर्फ़ क़्यामत वाले दिन मिलेंगे। चंद अल्फाज हैं लेकिन हकीकत बहुत बड़ी है जो इसके पीछे है। अब पिछली जो गुफ्तगू चल रही थी उसके बाद एक तमहीद छोटी सी बांधी कि कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, हर नफ्स ने मौत को चखना है, तो मौत को चखना है तो खुदा के सामने जाएगा, खुदा के सामने जाएगा तो क़यामत कायम होगी, क़यामत कायम होगी तो फैसले किए जाएंगे, फैसले क्या किए जाएंगे कि पूरा पूरा बदला उस दिन दे दिया जाएगा। तो दो बातें लाजमी हो गई, एक ये कि हर एक ने जाना है, कोई भी बचकर नहीं रहेगा यहाँ पर, सबको खुदा के हजूर पेश होना है, और फिर दूसरी बात ये फरमाई कि उस दिन फिर पूरे पूरे बदले मिलेंगे। तो इसका लाजमी जवाब ये हो गया कि जब ये कहा गया कि पूरे पूरे बदले तो उस दिन ही मिलने हैं, तो आपसे आप ये इसमें आ गया कि इस दुनिया में नहीं मिलने हैं, इस दुनिया में पूरी पूरी सज़ाएँ नहीं मिलनी हैं। फमन ज़ुहज़िहा अन नार व उदखिल जन्ना फ़कद फ़ाज़। तो अब जब उस दिन पूरे पूरे अजर मिलने हैं तो उस दिन जो दोजख से दूर कर दिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया तो बस वो कामयाब हो गया, अब वो नतीजे निकाल दिए अल्लाह ताला ने, इसका उलट नतीजा महसूब कर दिया, क्योंकि खुद बखुद वाज़े हैं कि जो दोजख में डाल दिया गया और जन्नत से दूर कर दिया गया तो वो नाकाम, ये खुद बखुद मौजूद है। तो अब ऊपर के जितने लोग नबी अकरम सल्लम के ख़िलाफ़ खड़े हैं या मजाक उड़ा रहे हैं, कुरान को मान नहीं रहे हैं और नबी अकरम सल्लम का भी इनकार कर रहे हैं, तो उन सब के लिए ये एक आईना सा बना दिया कि देखो तुम सब ने मरना है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक कोई बचा नहीं है, सब दुनिया से रुख्सत हुए और सब ने क़यामत वाले दिन अपने पूरे पूरे अंजाम से दोचार होना है। तो कामयाब कौन होगा? जो दोजख से बचा लिया जाए। नाकाम कौन होगा? जो दोजख में फेंक दिया जाए। ये पूरी एक तफसील कर दी। तो अब जाहिर है कि ये जो इंजाम हमारा है इसका इनकार भी लोग कर रहे हैं, लेकिन अपनी हकीकत के एतबार से अगर देखा जाए तो मौत बहुत ही बड़ी अलार्मिंग चीज़ है, बहुत ही बड़ी, कोई आदमी बचा हुआ नहीं है, यानी दुनिया में बहुत सारी बीमारियां हैं जो सबको नहीं लगती, बहुत सारी चीज़ें हैं जो, लेकिन इंसानों में से कोई एक भी नहीं है जो मौत से बचा हो, अब आजकल एक बात कही जाती है कि इंसान अगर मौत पे काबू पा ले तो क्या होगा। देखिए, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि सारे लोग तभी मौत मरेंगे। अल्लाह ताला ने यह भी कहा है कि मैं क़यामत में सबको उठा लूँगा। क़यामत का जो हादसा होना है उसमें, यानी कोई आदमी ये दावा करे कि भाई मैं बड़े ज़ोर से लगने वाली दिमाग में गोली से भी इंसान की ज़िंदगी बचा लूँगा, तो अगर वो ऐसा है तो फिर एक अलग बात है। लेकिन हादसा जो क़यामत का होना है उसमें सारे लोग चले जाएंगे। वो हो सकता है कि 800 साल के, 900 साल के हों, लेकिन वो सब चले जाएंगे। तो क़यामत वाले हादसे से कौन बचेगा? तो हर शख्स ने मरना है, ख्वा वो तभी मौत मरे, ख्वा वो हादसाती मौत मरे, या क़यामत के झटके और जलजले के बाद मरे, ये सब इस लफ्ज़ के तहत आ जाएंगे। तो मौत एक बहुत अलार्मिंग चीज़ है। ये बताती है कि हम सब की एक फिक्स्ड मंजिल है। हालांकि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, फिक्स कोई नहीं है। ये बिल्कुल फिक्स, यानी मेरा टाइम भी फिक्स नहीं है, आपका टाइम भी फिक्स नज़र नहीं आता कि मैं होना। तो अगर ये फिक्स होता कि भाई सारे के सारे 80 साल की उम्र में फ़ौत हो जाते हैं, लेकिन कोई भी 18, 15, 16 साल की उम्र में फ़ौत नहीं होता, तो फिक्स हो जाना था। लेकिन ये फिक्स है कि मरना सबने है। इसी तरह सलाहियतें देख लीजिए, इल्म देख लीजिए, वो कोई फिक्स नहीं है। लेकिन ये चीज़ फिक्स है कि हम सब ने मर जाना है। तो इस एतबार से दुनिया का कोई इंसान खुदा की गिरफ्त से नहीं बचेगा। अब आगे जो जुमला है वो भी बहुत अहम है कि जब क़यामत वाले दिन तमाम चीज़ों का पूरा पूरा अजर मिलना है और दुनिया में नहीं मिलना है, एक नुक्ता ये है। दूसरा नुक्ता यह है कि वहाँ जो कामयाब होगा, जो जन्नत में डाला जाएगा, वो कामयाब होगा, बाकी नाकाम होंगे। तो फिर दुनिया की ज़िंदगी का जो माल दौलत है ये क्या हुआ? इसकी तो कोई हकीकत नहीं। यानी ऐसा नहीं है कि मुझे दुनिया में अगर बहुत माल मिल जाए, कानून जितना ख़जाना मुझे मिल जाए, तो मैं कामयाब हो गया हूँ। वो तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कामयाब नहीं हुए। कामयाब तो वो होगा जो जन्नत में चला जाएगा। तो दुनिया में जो पैसा, दौलत, शोहरत, इज्जत मिलती है वो कामयाबी नहीं है। इसको फिर बयान किया यहाँ अल्लाह ताला कि वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। दुनिया की जो कुछ भी ज़िंदगी है वो तो सिर्फ धोखा का एक सामान सा है। धोखे का सामान का मतलब है कि जिसकी वजह से इंसानों को धोखा लग जाता है कि हम कामयाब हो गए कि नहीं हो गए। इस मानी में धोखा नहीं है कि वो उसकी कोई हकीकत ही नहीं है। नहीं, उसकी हकीकत है, लेकिन उसकी हकीकत बस इतनी है कि दुनिया में ज़िंदगी का सामान है, मता जिसको कहा गया है, तो ज़िंदगी गुजारने का सामान है। इसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। दाल, रोटी, चीनी, पत्ती, कहवा, जो भी दुनिया में खाते पीते हैं, वो सारा के सारा सिर्फ आर्जी तौर पर है। आजकल पैसे की शक्ल में हम ज़्यादा चीज़ों को देखते हैं, तो ये दुनिया का पैसा या दुनिया की ये नेमतें, ये सिर्फ़ और सिर्फ ज़िंदगी गुजारने की ये कामयाबी नहीं है। तो फरमाया कि इस पहलू से कि कामयाब वो होगा जो जन्नत में चला जाएगा मरने के बाद, और वो कामयाब नहीं है जिसको दुनिया में माल मिल गया। तो लोग इसको कामयाबी समझ लेते हैं, हालांकि ये तो हकीकत में सिवाय इम्तिहान के और कुछ नहीं है। और पीछे जो बात कही थी कि तुम्हें पूरा पूरा अजर तो क़यामत वाले दिन मिलना है, दुनिया में नहीं मिलना, किस एतबार से अगर देखिए तो दुनिया का ये सामान क्या है? ये अजर नहीं है। अगर फ़र्ज़ कर लीजिए किसी को अजर के तौर पर मिला भी है, तो करोड़ों रुपए की जन्नत के बदले में यहाँ 2 रुपए की कोई चीज़ मिल गई आपको। तो इस इनाम को के पीछे भागने से बेहतर क्या नहीं, ये नहीं है कि हम उस बड़े इनाम की तरफ भागें जो असल कामयाबी है। तो ये दोनों बातों को वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर के अल्फाज बयान करते हैं। तो अब ये एक और हिकमत है, बल्कि 3 हिकमतें हैं जो इसी एक आयत में अल्लाह ताला ने बयान की हैं। आज वाक़िया उहद और उसके हवाले से ये सारा कलाम जो हम पिछले कई हफ़्तों से पढ़ रहे हैं, ये खुदा की दुनिया को चलाने में और आखरत के लिहाज से जितनी भी हिकमतें हैं उसको एक एक करके अल्लाह ताला ने वाज़े कर दिया है। دور جدید کے بہت سارے سوالوں کے جواب اس مقام پہ آپ کو مل سکتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ غور سے پڑھنے سے ملیں گے. اگر بس ویسے ہی پڑھ کے چلے جائیں تو ان آیتوں میں بظاہر لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا معنی ہے جی، بس یہ اللہ نے حقیقت بیان کر دی ہے کہ ہر ایک کو مرنا ہے اور قیامت والے دن اجر ملنا ہے، جو دوزخ سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا، بس چھوٹی چھوٹی باتیں. لیکن یہ حقیقت میں بہت اہم معلومات اور بہت اہم باتیں ہیں. دیکھیں، سب سے بڑی جو حکمت ہوتی ہے، سب سے بڑی دانائی، سب سے بڑی معرفت، وہ یہ ہے کہ آپ کو حقیقت کا پتہ چل جائے. اگرچہ وہ سادہ سی ہو لیکن اگر وہ حقیقت ہے تو بس سمجھ لیجیے کہ آپ کو سب سے بڑی چیز مل گئی. اور یہ یاد رکھیے کہ حقیقتیں ہمیشہ سادہ ہوتی ہیں، حقیقتیں ہمیشہ سادہ ہوتی ہیں، اور وہ آپ سادگی سے بیان کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، لیکن بہت سارے جو پیچیدہ قسم کی باتیں ہیں وہ بھی دنیا میں کی جاتی ہیں، پائی جاتی ہیں. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غلط ہوتی ہیں، لیکن حقیقتیں ہمیشہ سادہ ہوتی ہیں. تو حقیقت کیا ہے اس دنیا کی؟ اللہ نے بنائی ہے اور ہمارے امتحان کے لیے بنائی ہے، اور ہم قیامت والے دن اپنے اپنے کیے کا اجر پائیں گے. یہ حقیقت ہے اس دنیا کی. اس حقیقت کے مطابق جس نے زندگی گزاری وہ سمجھ لیجئے کہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اس حقیقت سے منہ موڑا تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، لیکن بہرحال اس کے ناکامی کے راستے واضح ہیں. آگے فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ. اب دیکھیے، حقیقتوں پہ حقیقتیں اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں. وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. تمہیں لازماً بالضرور، اس میں لام بھی لگا ہوا ہے اور نون ثقیلہ بھی لگا ہوا ہے، یعنی لازماً ضروری ہے کہ تمہیں آزمایا جائے گا تمہارے مالوں میں اور تمہارے جانوں کے بارے میں. اصل میں تو یہ صحابہ کے لیے آیت ہے، لیکن دنیا کی حقیقت ہے. اس میں ہمارے لیے بھی پوری ہدایت ہے کہ ہم سب کے مالوں میں یا جانوں میں امتحان لیا جائے گا. یہ امتحان دو طرح سے ہے، ایک یہ کہ کبھی حادثات ہو جاتے ہیں، مال کو نقصان ہو جاتا ہے، آدمی آزمایا جا رہا ہے. کبھی براہ راست مانگ لیا جاتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، خود ہمیں خرچ کرنا ہوتا ہے، یہ بھی مال کا امتحان ہے. کبھی جان کے بارے میں یہی سوال ہو جاتا ہے، میدان جنگ میں اترو، رسول کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ادھر سے تیر آ رہے ہیں، ادھر سے نیزے آ رہے ہیں، خدا کے رسول کا دفاع کرو، آ جاؤ. تو یہ بھی دونوں میں، جان میں اور مال میں، کبھی حادثات کے ذریعے سے آزمایا جا رہا ہوتا ہے، کبھی ہم سے ڈیمانڈ کر کے آزمایا جا رہا ہوتا ہے. تو فرمایا کہ یہ تم سے یہ امتحان لازماً لیا جائے گا، یعنی اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. لازمی ہے کہ ہر ایک کا امتحان ہوگا، ضروری ہے کہ ہر ایک کا امتحان ہوگا، کوئی اس سے بچ نہیں پائے گا. اللہ کے رسول بھی اس سے بچے ہوئے نہیں تھے. تو میں اور آپ چوبیس گھنٹے امتحان میں ہیں، ایک لمحہ بھی امتحان سے باہر نہیں ہوتا، کوئی چھٹی نہیں ہے، ساتوں دن 24 گھنٹے ہم امتحان میں، کوئی چھٹی نہیں. جس دن دفتر سے چھٹی ہو اس دن بھی امتحان ہے، بلکہ اس دن زیادہ بڑا امتحان ہوتا. تو اس لیے امتحان کو یہ خیال نہ کریں کہ کوئی لمحہ امتحان سے باہر ہوگا. امتحان ظاہر ہے کہ میرا اور آپ کا سچائیوں کا ہے، کوئی ریاضی کا نہیں ہے، بایولوجی کا، کیمسٹری کا نہیں ہے. یہ امتحان ہے کہ میں نے سچائی پر کیسے قائم رہنا ہے، ہر طرح کے مطالبے کی شکل میں، ہر طرح کے حالات میں سچ بولنا ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ جو یہ راستے نیگیٹو راستے ہوتے ہیں، یا جھوٹ ہے مثلاً، یا رشوت ہے، یا یہ نجات کے راستے ہیں. ہر کس ایسا نہیں ہے. جب میں جھوٹ بول کے اپنی جان بچاتا ہوں یا اپنی شان بناتا ہوں या अपनी बेइज्जती को से बचता हूँ तो आदमी को पता नहीं चलता, दूसरे लोग जान जाते हैं मेरे इर्द गिर्द कितने लोग हैं जो शेखी बिगाड़ने वाले, अपने आप को बड़ा साबित करने वाले, वो नज़र आ रहा होता, बिल्कुल वाजी हो जाता है। आप हफ्ता भर अगर आपसे मुलाकात दो चार हो जाए हफ्ते में तो आदमी खुल के सामने आ जाता है। तो बड़े लोगों को मैंने देखा है कि वो झूठी तारीफें करके, अपनी झूठे वाक्यात सुनाकर उनकी हकीकत चंद दिनों में वाजी हो जाती है। तो वो जो इज्जत कमाने की कोशिश कर रहे होते हैं वो ज़्यादा नुकसान अपना कर लेते हैं, उनका एतबार ख़त्म हो जाता है उनके ऊपर। बाज़ का ये भी होता है कि बीवी है तो उसके शोहर का एतबार उठ जाता है, शोहर है तो बीवी का एतबार उठ जाता है, बाप है तो बेटे का एतबार उठ जाता है, बेटा है तो बाप का एतबार उठ जाता है। इतने करीबी लोग भी उस पर एतबार नहीं करते फिर। और बाज़ लोग अपनी गलती को छुपाने के लिए ऐसा कर रहे होते हैं, वो गलतियाँ किसको नज़र नहीं आती। क्या लोग अंधे होते हैं, बेवकूफ़ होते हैं? ऐसा हर किस नहीं। और मैंने दुनिया को जितना सियाना पाया है वो हैरत अंगेज़ है। यानी दूर बैठा हुआ एक आदमी, वो जंगल में, वो कश्मीर के आखिरी किनारे इंडिया की सरहदों पर बैठा हुआ एक आदमी आराम से कह देता है कि फलां आदमी ऐसा है, चंद बातों से, चंद जुमलों से। तो ये जो चीज़ें हैं ये इसको समझना चाहिए कि हमें, हम जो मुसलमान हैं, खुदा के बंदे हैं, आखिरत में अल्लाह के हुजूर जाना है, तो हमें कदम कदम पर सच्चाई पर कायम रहना है, कदम कदम पर। कभी एक दूसरे को झूठ बोलकर अपना मफाद हासिल नहीं करें, झूठ बोलकर अपनी इज्जत नहीं बनाएं, झूठ बोलकर अपना दिफा ना करें, हरगिज़ कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं। बल्कि ये चीज़ सीखनी चाहिए कि मैं झूठ बोलने से कैसे बचूं, झूठ बोलने से कैसे बचूं। ये बेहतर है कि आप कहें जी मैं इस सवाल का जवाब नहीं दे सकता, ये बेहतर है कि जी मैं आपसे इस मौजू पर बात नहीं कर सकता, ये बेहतर है झूठ बोलने से। वो थोड़ी देर नाराज़ हो जाएगा लेकिन आपकी इस पहलू से कदर करेगा कि कम से कम मुझे झूठ बोलकर धोखा नहीं दिया, मेरे साथ कोई नाइंसाफ़ी वाला काम नहीं किया। तो ये चीज़ जो है ये इसको समझिए कि हम मोमिनीन जो हैं वो 24 घंटे हर लम्हे सातों दिन हफ्ते के इम्तिहान में हैं, और इस इम्तिहान में कामयाब वही होगा जो सच्चाइयों पर कायम है, जो सच्चाइयों पर कायम है। और ये जो इम्तिहान है ये माल में भी होगा और जान में भी होगा। जान में दो पहलू कर लीजिए कि जान में चूंकि शख्स मुराद होता है तो मुझे चोट लग सकती है, जान जा सकती है, कोई अजीज़ मेरा फौत हो सकता है, कोई, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं। और ये चीज़ भी शामिल है कि मेरी जो इज्जत है उसको कोई धब्बा लग सकता है, उसके ऊपर कोई तोहमत आ सकती है, तो ये सारा कुछ इसके अंदर है। यानी हमें कम से कम हर वक्त ये तैयार रहना है कि पता नहीं क्या सामने आने वाला हो। आगे फरमाया कि वला तस्मउन्ना मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन कब्लिकुम व मिनल्लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा। तुम यकीनन सुनोगे उन लोगों से जो अहले किताब हैं, जिनको तुमसे पहले किताब दी गई, और वो भी जो शिर्क करने वाले हैं, इनकी तरफ से तुम बहुत अजियत वाली बातें सुनोगे, बहुत अजियत वाली बातें सुनोगे। यहाँ नज़्म कुरान के जो तालिबे इल्म हैं उनके लिए भी एक इसमें बड़ा खूबसूरत इशारा है, और कुरान मजीद की खुदा की किताब होने का भी एक खूबसूरत पहलू है। आप लोगों को याद होगा कि अल्लाह ताला ने ये कहा था कि तुम साबित कदम रहो और तकवा इख्तियार करो तो ये तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकेंगे, इल्ला अज़न, सिवाय अज़ियत के। जा ये आयत नंबर 111 है, फरमाया था ला यज़ुर्रुकुम इल्ला अज़न, अगर तुम ठीक रहे, तकवे पर कायम रहे तो ये तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकेंगे, और अगर लड़े भी तुमसे तो लाजमन शिकस्त खाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि हुआ क्या है कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये जो मुशरिकीन हैं और जो अहले किताब हैं वही अजियत पहुँचाने के लिए अब ये तुम्हें बातें करेंगे, बस और कुछ नहीं। अगर मैं और आप कलाम कर रहे होते हैं तो इतनी एहतियात नहीं बरतते। एक एक लफ्ज चुना हुआ है, हैरत अंगेज। तो फरमाया कि तुम अहले किताब और मुशरिकीन की तरफ से बहुत ज़्यादा अजियतनाक बातें सुनोगे। अब जो अजियतनाक बातें हैं, इसके साथ कसीरन का लफ्ज़ लगाया है, अजीमन का लफ्ज़ नहीं लगाया। कसीर का मतलब हर रोज़ कोई तोहमतें आ रही हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नौज़ बिल्ला बातें हो रही होंगी, जिस तरह उहद में हुई, और कोई आगे चल कर जैसे मालूम हुआ कि सैयदा आयशा पर इल्ज़ाम लगे और इस तरह की चीज़ें, वो सब कुछ इसी तरह की चीज़ें हैं। तो फरमाया कि ये इस तरह की चीज़ें, अजियत वाली बातें, तकलीफ़ दे बातें तुम्हें करते रहेंगे। अब ये कौन हैं? सहाबा हैं, अल्लाह के रसूल हैं। इनको ये कहा जा रहा है कि तुम्हें ये बातें सुननी पड़ेंगी, ये ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा है। अब इम्तिहान में एक पहलू को खोल दिया है कि तुम्हारी जानों से और तुम्हारी अम्बाल से तुम्हारे आजमाया जाएगा। और मैंने कहा था कि मेरा नफ्स शख्सियत भी शामिल है, तो इस शख्सियत को अजियत दी जाए, इसको ताने दिए जाएं, तो वो भी तकलीफ़ होगी। हालांकि ना ज़ख़म को नहीं लगा, लेकिन दिल में जो ज़ख़म लगने हैं वो भी ज़ेर बहस आ गए। तो तुम लाजमन सुनोगे, यहाँ पर भी ज़ोर है, लाम भी लगा हुआ है और नून के ऊपर शब्द लगा के सकीला बनाया गया उसको। लाजमी तौर पर तुम सुनोगे, ज़रूरी है कि तुम सुनोगे, इसके सिवा चारा नहीं है कि तुम सुनोगे अहले किताब की बातें भी और मुशरकीन की बातें भी। कैसी बातें? अजियत वाली, बहुत ज़्यादा सुनोगे, सुबह शाम फितने पड़े रहेंगे। सूरह अज़ाब में आगे चलकर मालूम होगा कि मदीना में ऐसी सूरत हाल थी बाज़ औकात कि सनसनी फैली हुई, ऐसे कि पता नहीं बातों का भूचाल आया हुआ है, उधर से बात, उधर से बात, उधर से फितना, उधर से फितना। तो इतने एक्टिव थे ये लोग कि कुरान ने पीछे भी जिक्र किया है कि ये कुफर में जो युसारिऊना फिल कुफर हैं, ये कोई क्या मसला है कि ये सारे के सारे इतने ज़बरदस्त तरीके की कोशिशें कर रहे हैं कुफर के अंदर। तो वो ये सारी फ़जा है जिसमें ये बात कही जा रही है। तो दीन की खातिर और अच्छे कामों की खातिर हमें बातें सुननी पड़ सकती हैं, उसमें घबराना नहीं चाहिए। ये शायद का पैगाम है, बल्कि कहा गया कि लाजमन होंगी। हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ इस वजह से बाज़ काम नहीं करते, लोग क्या कहेंगे। ये बिल्कुल गलत रवैया है। लोगों ने कहना ही कहना है, अच्छा करें तब भी कहना है, उनकी पसंद का करें तब भी कहना। मुझे नहीं मालूम, मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ जितनी शादियाँ हुई हैं, बहुत बड़ी शादियाँ मैंने अटेंड की हैं, यानी जिसकी इंतजामात की मेरे वहमो ख्याल में भी ना हो, उसको भी बातें हुई हैं, और जिन्होंने सादा तरीके से की उनको भी बातें हुई हैं, तो फ़ायदा क्या हुआ। तो बातें होनी ही होनी है, ये दुनिया का मिजाज। इंसानों को अल्लाह ताला ने देखिए, इंसान को उसकी सलाहियतों और शख्सियत के अतबार से देखना चाहिए, ना कि अपनी पसंद के लिहाज से। तमाम इंसानों ने बातों के नतीजे निकालने ही निकालने हैं, खुदा ने हमें जहन ही ऐसा दिया है, नतीजे निकालने निकालने, मीनिंग हमने निकालने निकालने, अजम्पशंस हमने डालने ही डालने हैं। ये हो नहीं सकता कि हम हर बात के मानी ना निकालें। अगर हम मानी नहीं निकालते तो कुरान के नहीं निकालते, बाकी सब के निकालते। हैरत अंगेज़ बात। यानी कदम कदम पे मेरी किसी हरकत का कोई मतलब ना निकलता हो, ये हो नहीं सकता। आपकी किसी हरकत का कोई मतलब ना निकलता हो, ये हो नहीं सकता। हाँ, कुछ काबिल कबूल होती हैं, लोग खामोश रहते हैं, कुछ काबिल कबूल नहीं होते, वो फिर बोल पड़ते हैं या दिल में बुरा मानते हैं। तो ये दुनिया की हकीकत है कि इंसानों को अल्लाह ताला ने, असल में इल्म सीखने का ज़रिया उसका यही है, वो हाइपोथेसिस कायम करता है, वो चीज़ों के पीछे कुछ ख्यालात लेके आता है, फिर उसके मानी निकालता है, फिर वो इल्म बढ़ता है। तो वो इल्म बढ़ना चाहिए दुनिया की हकीकतों के बारे में, लेकिन वो इंसानों के बारे में बढ़ता है। उसके काम को उस मानी में देख लिया किसी ने, उसको देख लिया, एक ही वाक्य होगा, जो पसंद करने वाला है वो उसके अच्छे मानी ले रहा होगा, दूसरा उसके नेगेटिव मानी ले रहा होगा। तो ये बातें होनी ही होनी हैं दुनिया में, इसके बच कर नहीं रहा जा सकता, सिवाय इसके कि हम बहुत अच्छी ट्रेनिंग के बाद लोगों के जहन को इधर लगा दें कि वो दूसरी चीज़ें सोचने लगे। मसलन हराम होना चाहिए हर मजलिस में कि हम किसी शख्स के बारे में बात नहीं करेंगे, हराम होना चाहिए। اور یہ اس لیے کہ اس کے نتیجے میں بہت برے نتائج نکلتے ہیں، شخصیتیں تباہ ہوتی میں نے دیکھی ہیں، تعلقات ختم ہوتے دیکھے ہیں، بھائیوں اس کے اندر چیر پھاڑ ہوتے میں نے دیکھی ہیں۔ تو اس لیے باتیں جو ہیں وہ انسانوں کو انسانوں کے بارے میں کرنے، سب سے گھٹیا مضمون کسی انسان کو زیر بحث لانا ہے، لیکن بہرحال کبھی لانا پڑتا ہے مشورے کے موقع پر معاملات کرتے ہوئے، تو اس موقع پر تو مجبوری ہوتی ہے، لیکن عام حالات میں ہر وقت ہم لوگوں کے بارے میں باتیں کرتے رہیں، سوچتے رہیں فلانا ایسا ہے فلانا نے ایسا کیا ہے، تو نہ صرف یہ کہ ہم اس کو اس کی چغلی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہم اپنا آپ بھی ستیاناش کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں اس میں لذت آنی شروع ہو جاتی ہے، اس میں ہمارا کتھارسز ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی برائیاں سوچ سوچ کے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کمال ہو گیا ہے، دل نہیں چاہتا کہ اس خیال کو توڑا جائے چھوڑا جائے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ دوسرا شخص بالکل نکو ہو کے رہ جاتا ہے آپ کے دماغ میں، گھٹیا ترین انسان بن جاتا ہے، نفرتیں پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں، دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اور میں نے سگے بھائیوں کے درمیان یہ دیکھا ہے کہ وہ بھوکا بیٹھا ہوا گھر وہ ایسا ہی کرتا رہتا ہے، بس اس کے دوست کھا جائیں گے اس کے گھر سے، اس کا سگا بھائی محروم ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اوور تھنکنگ کر کر کے اپنا بھی اور اس کا بھی ستیاناش کر رکھا ہے، دماغ ہی دماغ میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بدگمانیوں سے روکتے ہیں، اوور تھنکنگ بدگمانی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ بہت اہم مقام ہے۔ آگے فرمایا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم ثابت قدمی سے کام لو اور تقوی سے کام لو تو، آگے جواب چھوڑ دیا ہے، اگر ثابت قدمی سے کام لو اور تقوی سے کام لو تو یہ مہم آرام سے گزار جاؤ گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مہم بہرحال مشکل کاموں میں سے ہے۔ یہاں روک لیتے ہیں اس حصے کی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں، اگلے سیشن میں انشاءاللہ وضاحت کر دوں گا، یہ بھی بہت اہم حکمت ہے، اس کے اندر بھی تھوڑا ٹائم چاہیے ہوگا، تو انشاءاللہ اگلی دفعہ اللہ نے چاہا تو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔